चलिए मंगलाचरण करते हैं सभी भाई।
नमो निहंकारम् नमो तीर्थाणम् नमो आयिराणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाम।
अभी अपना प्रकरण चल रहा है जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर। बुक कौन सी है?
जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर
माला।
हम लोग कौन है? जीव है। पक्का जीव हो?
हम जीव है। इस बुक का नाम क्या है? जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला। कि हमारे जो बेसिक सिद्धांत है, हमारे धर्म के जो बेसिक सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांतों के जो मुख्य प्रश्न है, उन प्रश्नों को एक माला के रूप में पिरो के इस बुक के अंदर रखा गया है। बराबर है।
अभी इसके अंदर सबसे पहला प्रकरण हमने पढ़ लिया है। दूसरा प्रकरण जो गुण अधिकार का प्रकरण है, वो अधिकार यहाँ पे प्रारंभ होगा। कितना हो चुका है गुण अधिकार में भी? सामान्य गुण तक का विषय हो चुका है। अभी सामान्य गुण का विषय हमको प्रारंभ करना है। प्रश्न क्रमांक है 31। सामान्य गुण की परिभाषा हुई। प्रश्न नंबर 73 पहला की गुण।
चलिए बेसिक से समझते हैं। सबसे पहला जो प्रकरण है द्रव्य गुण और पर्याय।
बराबर है। द्रव्य गुण और पर्याय। आप सभी ने विश्व देखा है? विश्व देखा है कि नहीं?
ड्रॉइंग में देखा। बिल्कुल सही। ऐसे सामान्य में तो विश्व हमने नहीं देखा है। विश्व कैसा दिखता है?
इस तरह का सामान्य से विश्व हमको दिखता है। बराबर है।
हम जिस विश्व को विश्व मानते हैं, गोल वाला, जिसको दुनिया विश्व मानती है, उस विश्व की चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ जो जैन सिद्धांत के अनुसार से जो विश्व माना जाता है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रकरण है द्रव्य, द्रव्य छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये जो पूरा विश्व है वो किससे बना हुआ है? छह द्रव्यों से बना हुआ है। इस विश्व को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि अभी हमने देखा ना, छह द्रव्यों के समूह से विश्व बना है। इससे स्पष्ट होता है कि इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है। अगर बनाया नहीं है तो कोई इसका नाश भी नहीं कर सकता, ना बना सकता है ना नाश कर सकता है, तो चलाने वाला भी कोई नहीं है। तो ये जो विश्व है, ये छह द्रव्यों के समूह से अपने आप ही स्वनिर्मित है और स्वयं संचालित है। कोई ना इसको बनाने वाला है, ना कोई इसका नाश करने वाला है। अब ये विश्व तो हुआ छह द्रव्यों के समूह का नाम। अब अगला क्वेश्चन है द्रव्य किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को तो विश्व कहते हैं, अभी हमने देखा। अब मेरा अगला क्वेश्चन है द्रव्य किसे कहते हैं? जिन छह द्रव्यों को हमने ज्वाइंट करके विश्व बनाया, वो छह द्रव्य, तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और इस पर प्रिय परिभाषा, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, उसे द्रव्य कहते हैं। उसे गुण कहते हैं। सोते हैं, सोना नहीं है, जगते रहना। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, अवस्था मतलब होता है पर्याय, मैंने एक डब्बा बॉक्स लिया और बॉक्स में मैंने शक्कर भर दी, बराबर है। मैंने बॉक्स में क्या भर दी? शक्कर, शुगर भर दी। जैसे आत्मा में कितने गुण भरे हुए हैं? अनंत गुण भरे हुए। आत्मा में कितने गुण है? अनंत गुण है। जैसे शक्कर के डिब्बे में
अनंत
शक्कर है, जितनी भी शक्कर है। समझ के बोलना, बराबर है कि नहीं? पीछे से बराबर है कि नहीं? क्यों बराबर नहीं है? नहीं, काउंटिंग छोड़ दीजिए, काउंटिंग की अपने को मिस्टेक नहीं लेनी है। वो अनगिनत है या वो गिनत है उसकी नहीं, कोई और मिस्टेक।
शक्कर में एक ही गुण है।
आपने कहा शक्कर का डब्बा, डब्बा शक्कर का नहीं है, शक्कर से भरा हुआ है।
हाँ, आत्मा और गुण एक ही है, शक्कर और डब्बा अलग अलग है। समझ में आया? मैंने कहा चाहे शक्कर का डब्बा हो चाहे प्लास्टिक का, डब्बे की मिस्टेक नहीं है। डब्बा हमने कोई भी लिया, उसके अंदर हमने शुगर भरी, लेकिन ऐसा आत्मा में गुण नहीं भरे हुए। कोई अगर ऐसा कहे कि आत्मा में गुण ऐसे भरे हुए हैं जैसे शक्कर के अंदर, डब्बे के अंदर शक्कर भरी हुई है, या ऐसा कहो कि नीचे प्लास्टर है उसमें पब्लिक भरी हुई है, ऐसे आत्मा में अनंत गुण भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको अलग किया जा सकता है, लेकिन आत्मा में गुण तो कैसे हैं? जैसे गुड़ के अंदर मिठास है, शुगर कैन के अंदर जैसे मिठास है, गुड़ के अंदर जैसे मिठास है, शक्कर के अंदर जैसे मिठास है, उसका जो स्वीटनेस है वो उस शक्कर से कभी अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मा में से गुण भी अलग नहीं हो सकते। तो अब गुण किसे कहते हैं? द्रव्य तो हो गया जीव, ये जीव द्रव्य हो गया। अब जो जीव द्रव्य के सभी भागों में, सभी भागों से मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, कहीं भी आप लगाओ, कहीं भी आप देखो तो वो गुण उसमें विद्यमान। ये तो हो गया भाग। अब बात आई अवस्था की। अवस्था मतलब पर्याय। मेरी पर्याय इससे पहले कुछ और थी, इसके बाद मेरी पर्याय कुछ और होगी। लेकिन जो गुण है, जो मेरा गुण है, वो पहले की पर्याय में भी, जो मेरा ज्ञान गुण है वो पहले की पर्याय में भी विद्यमान था। और कैसा विद्यमान था? जैसा अभी है वैसा का वैसा पहले भी विद्यमान था, और आगामी पर्याय में भी वैसा का वैसा ही रहने वाला है। मतलब जो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जो जिस द्रव्य का गुण है, वो गुण वो द्रव्य किसी भी पर्याय में रहे, वो गुण उसके अंदर हर अवस्था के अंदर विद्यमान रहता है। अब गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसके संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। बराबर है, याद रहेगा। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसको गुण कहते हैं। अब गुण के दो भाग होंगे। ये जो गुण लिया, इस गुण के दो भाग हैं। एक है सामान्य गुण और एक है विशेष गुण। गुण के कितने डिविजन? टू। एक है सामान्य और एक है विशेष। सामान्य मतलब वर्ड से ही बिल्कुल क्लियर है, जो हर द्रव्य में पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं, और उसका अपोजिट विशेष गुण, जो हर द्रव्य में तो नहीं लेकिन अपने अपने द्रव्य में पाया जाता है उसे विशेष गुण कहते हैं। बराबर है। गुण के हमने दो भेद किए। गुण किसके अंदर रहते हैं? द्रव्य के अंदर। गुण किसके अंदर रहते हैं? द्रव्य के अंदर। अब मान लीजिए द्रव्य कितने हैं?
छह।
कौन कौन से?
आकाश,
जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और का। बराबर है। अब मैंने लिया ज्ञान गुण। ज्ञान हमको सबसे पहले ख्याल में आता है ना, तो मैंने एक ज्ञान गुण पकड़ लिया, बराबर है, मान लो एक्स की वैल्यू, तो हमने ऐसे ही ज्ञान गुण हमने पकड़ लिया। अब ये ज्ञान गुण है तो गुण, ये पुद्गल में है?
नहीं।
ज्ञान गुण पुद्गल में है? ज्ञान गुण काल में है? नहीं है। ज्ञान गुण इन पांचों द्रव्य में?
नहीं
है, नहीं है। मात्र जीव द्रव्य में है। तो ये ज्ञान गुण क्या हुआ? विशेष गुण। ज्ञान गुण क्या हुआ? विशेष गुण। और अब हम जो चर्चा करेंगे कि जैसे अस्तित्व गुण, तो ये अस्तित्व गुण मतलब अस्थिपना, अस्तित्व गुण मतलब अस्थिपना है पना। तो ये अस्तित्व गुण इन छहों द्रव्यों में कॉमनली है, तो ये आता है सामान्य गुण के अंदर। समझ में आया? सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में पाया जाए उसे सामान्य गुण कहते हैं, और जो सभी द्रव्यों में तो नहीं लेकिन अपने अपने मात्र विशेष विशेष द्रव्यों में पाया जाता है उसे विशेष गुण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब जो विशेष चर्चा हमको करनी है, अभी हम क्वेश्चन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, पहले एक चैप्टर का एक सामान्य हमको एक अवलोकन हो जाए कि हमें क्या क्लियर करना है। तो अभी हमने देखा कि ये जो गुण है उस गुण में दो भेद किए, सामान्य गुण और विशेष गुण। अब सामान्य गुण कितने हैं? सामान्य गुण वैसे तो अनंत है, सामान्य गुण वैसे तो अनंत है, लेकिन मुख्य रूप से उनको छह भागों में बांटा है। मुख्य रूप से छह भागों में बांटा है, वैसे कितने हैं? अनंत है। सबसे पहला है अस्तित्व, फिर वस्तुत्व, आगे उसका क्रम कैसा भी हो सकता है, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व, प्रदेशत्व। जिन्होंने भी बचपन में पाठशाला पढ़ी होगी उनको ये याद होगा, नहीं पढ़ी होगी तो अभी वापस से याद कर ले। छह सामान्य गुण है, सामान्य गुण में सबसे पहला है अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अघुण लघुत्व और प्रदेशत्व। ये छह सामान्य गुण सभी द्रव्यों में, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन सभी द्रव्यों में ये सामान्य गुण पाए जाते हैं, इसके लिए इन्हें सामान्य गुण कहते हैं। और जो अपने अपने द्रव्य में, जैसे अब ये चौक आप सबको दिखता है, दिखता है, इसमें क्या है, ये रूपी है, इसका क्या है, रूपी बना है। तो रूपी बना किस द्रव्य में पाया जाता है? सिर्फ उद्गल में ही पाया जाता है, सिर्फ उद्गल ही दिखाई देता है, बाकी जीव धर्म अधर्म आकाश काल दिखाई नहीं देता। तो ये रूपीपना पुद्गल का विशेष गुण है। ऐसे चलने में कौन निमित्त है? धर्मास्तिकाय। रुकने में अधर्मास्तिकाय, रहने में आकाश, परिलंबन में काल। तो ये जो है ये सब उनके उनके विशेष गुण है, तो वो उन द्रव्य के विशेष गुण है, और ये सब क्या है, ये सभी द्रव्यों के सामान्य गुण है। ये अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अघुण लघुत्व प्रदेशत्व, ये सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अब सबसे पहला आता है अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अस्थि, अस्थि मतलब होना है पना, अस्थि मतलब जैसे बोलते ना मेरी क्या है, अस्थि है, अस्थि मतलब मैं हूँ, मेरी अस्थि है इसका मतलब मैं हूँ। तो ये जो अस्तित्व गुण है वो बताता है कि द्रव्य है, द्रव्य का नाश नहीं हो सकता, द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है, वो द्रव्य अपने अस्तित्व गुण के कारण विद्यमान है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अस्थिपना कायम रहे, है पना कायम रहे, उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। बराबर है। अब अस्तित्व गुण से फायदा क्या है? अस्तित्व गुण से क्या फायदा है? हमने अस्तित्व गुण को जाना, तब जैसे कभी ना अपन स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या किसी से भी लड़ाई हो जाए और वो बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, कोई बाहर में ऐसा बोल दे कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरा अहित कर दूंगा, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, तो अगर मुझे अस्तित्व गुण के ऊपर भरोसा है तो मुझे ये ख्याल रहता है कि मेरे अंदर अस्तित्व गुण है, मेरा कोई भी नाश नहीं कर सकता है ना। कोई कितना ही बोले कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरा प्राण हर लूंगा, जो भी, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, लेकिन कोई भी मुझे खत्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे अंदर कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण मेरे अंदर है, तो कोई भी मेरा नाश नहीं कर सकता। और क्या अस्तित्व गुण जानने से हमको ये भी मालूम चलता है कि मेरा जो है अस्थिपना है वो सबसे कैसा है? भिन्न है। मैं अपने अस्थिपने से हूँ, कोई दूसरा ना मेरे को कुछ कर सकता है, ना मेरे में से कुछ ले सकता है। कहते ना कोई पर द्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, ना मैं कुछ पर द्रव्य का कर सकता हूँ। तो वो सब इस अस्तित्व गुण के अंदर आता है कि अस्तित्व गुण के द्वारा जीव में अस्थिपना सदा विद्यमान रहता है। अस्तित्व के बाद आता है वस्तुत्व। वस्तु मतलब जैसे इसमें अस्थि, वैसे इसमें वस्तु। वस्तु मतलब थिंग। तो हमारे अंदर वस्तु मतलब उसकी क्रिया, प्रयोजन भूत क्रिया। जैसे हम सात तत्व का चैप्टर हमने जब पढ़ा था, या छेड़ाला में जब हमने सात तत्व के संबंधी चर्चा की थी, तो उन सात तत्व को हम क्या बोलते हैं? प्रयोजन भूत तत्व। प्रयोजन भूत तत्व क्यों बोलते हैं? सात तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व क्यों कहते हैं? बहुत आसान है, आप उसको डिवाइड कर लीजिए। प्रयोजन भूत तत्व। प्रयोजन मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। प्रयोजन मतलब क्या? आप कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे आपका प्रयोजन, आपका रीजन क्या है, हेतु क्या है, वो हो गया प्रयोजन। बराबर है। अब मैंने हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, उसके पीछे अब मैं स्टडी कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसके पीछे उसका प्रयोजन क्या है? उसको उसका गोल दिखाई देता है कि मैं जब डॉक्टर की स्टडी करूंगा तो फिर मुझे क्या होगा, मुझे बाद में अच्छी लाइफ मिलेगी, मुझे इनकम अच्छी होगी, मैं अच्छी जॉब, मुझे अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, मुझे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। तो वो उसका क्या है? उसके पीछे का हेतु है, उसकी अभी की स्थिति का वो क्या है? हेतु है। तो ऐसे ही ये जो प्रयोजन है, इन सात तत्वों को जानने के पीछे जो प्रयोजन है वो क्या है कि हमारा मूल प्रयोजन क्या है? क्या है हमारा मूल प्रयोजन? कहाँ जाना है? निज पथ पर जाना है। निज पथ पर क्यों जाना है? हाँ, मूल प्रयोजन क्या है? मोक्ष भी नहीं जाना है, सुखी होना है। हमें मोक्ष नहीं जाना है, हमें मात्र क्या करना है? सुखी होना है। अगर सुखी होने में मोक्ष मिलता है तो मिले। जब हमने पढ़ा ना छेड़ाना के अंदर कि जगत के सभी जीव कैसे हैं? दुखी हैं। हम लोग कैसे हैं? हम तो सुखी हैं। हम क्या दुखी हैं, है ना? हमें तो बिल्कुल, अभी तो गर्मियों का समर वेकेशन चालू है, पूरा हर घूमना फिरना चालू है ना, हम तो दुखी। पहले हमें लगाना पड़ेगा कि हम कैसे हैं? दुखी हैं, तभी तो हम कोशिश करेंगे। अगर किसी को लगेगा ही नहीं कि मैं दुखी हूँ तो उसको सुखी होने का तो फिर वो कोशिश ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या है? दुखी है। ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे, कि सभी सुख चाहते हैं। तो मैं दुखी हूँ तो मुझे क्या होना है? सुखी होना है। बराबर है। तो अभी सुखी होना है तो उस सुखी होने के लिए किसका मुझे ध्यान करना पड़ेगा? अपने आत्मा का। बराबर है। अपने आत्मा का, अपने तत्व का। तो जब आत्मा का ध्यान करूंगा तो मुझे आत्मा के साथ साथ आत्मा से जो भिन्न पदार्थ है उसका भी ज्ञान करना पड़ेगा। बराबर है। मैं जीव को जानूंगा तो मुझे अजीव को भी समझना पड़ेगा, तभी तो मैं जीव और अजीव का भेद करूंगा। अगर मुझे ये तो मालूम है ये मेरी आत्मा है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये पुद्गल है या ये अजीब है, तो मैं क्या मानूंगा कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, सब आत्मा है, ऐसा मानूंगा। तो मुझे जीव को भी जानना पड़ेगा और उसके साथ में अजीब को भी जानना पड़ेगा, और फिर जिन कारणों से मैं दुखी हो रहा हूँ, जो आश्रय बंध है, जिनके कारण कर्म मेरे से आ रहे हैं, मैं दुखी हो रहा हूँ, और जिन कारणों के द्वारा मैं सुखी हो सकता हूँ, समवर निद्रा के द्वारा मैं सुखी हो सकता हूँ, तो मुझे उनको भी जानना पड़ेगा। तो मेरा जो प्रयोजन था, क्या प्रयोजन था, सुखी होने का जो प्रयोजन था, वो प्रयोजन इन सात तत्वों को जानने से पूरा होता है। इसके लिए इस तत्वों को क्या कहते हैं, प्रयोजन भूत तत्व, बराबर है। मेरा अब कोई ये बोले कि ये साथी क्यों है, साथी क्यों है, प्रयोजन पूरा होता है तो एक दो और बढ़ा दो, अपने को जहाँ प्रॉफिट मिलता है वहां तो एक दो एक्स्ट्रा, जहाँ प्रॉफिट दिखाई देता है वहां तो क्या करना चाहिए, एक तो एक्स्ट्रा कर देना चाहिए, तो सात की जगह दस कर दो, आठ कर दो, नौ कर दो, तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, नहीं प्रश्न है इन सात को आठ कर सकते हैं कि नहीं, या फिर ये सात ही क्यों है, छह क्यों नहीं है, समझ में आया क्या प्रश्न है। ये जो तत्व थे, जो सात तत्व की बात हमने की, प्रयोजन भूत की बात की, वो सात पे ही क्यों हमने क्रॉस कर दिया, छह क्यों नहीं रखा या आठ क्यों नहीं रखा, बोलिए तत्व सात ही क्यों रखे, ऐसे काम नहीं चलेगा, सीखना है तो याद भी करना पड़ेगा, ये चीज पहले भी हो चुकी है एक बार, इसके लिए मुझे लगा कोई तो आंसर देगा, क्यों रखे, क्योंकि अभी हमने देखा ना ये सात के अंदर ही मेरा प्रयोजन पूरा हो जाता है, इसके लिए सात के आठ नहीं रखे, और सात से कम में भी मेरा प्रयोजन पूरा नहीं होता, इसके लिए सात से छह नहीं रखे। मूल क्या है, मेरे को मेरा प्रयोजन पूरा करना है, और वो प्रयोजन क्या है, सुखी होना, तो सुखी होने के लिए सबसे पहले मुझे मुझको जानना पड़ेगा, बराबर है। तो सबसे पहले किसको जाना, जीव को जाना, मैंने मेरे को तो जाना, लेकिन मुझसे अलग जो ये शरीर है वो तो शरीर को भी तो मुझे जानना पड़ेगा, तो फिर किसको जाना, अजीव को जाना, बराबर है। अब उसके बाद में ये जो जीव है वो दुखी क्यों हो रहा है, किन कारणों से इसमें कर्म आ रहे हैं, तो जो आश्रम है उस आश्रम को भी जानना पड़ेगा, आश्रम के बाद जो कर्म का बंधन हो रहा है, या आश्रम किसके कारण आ रहा है, आश्रम को कैसे रोक सकते हैं, संवर के द्वारा, आश्रम को कैसे रोक सकते हैं, संवर के द्वारा, तो अरे वापस से छड़ाला आपको रिवाइज करानी चाहिए। आश्रम है, आश्रम मतलब क्या होता है, आश्रम किसे कहते हैं, कर्मों का आना, और कर्मों का आना रुकता किसके द्वारा है, कर्मों का आना रुकेगा संवर के द्वारा, बराबर है। अब कर्म आते हैं तो उनका क्या होता है, बंद होता है, और ये बंद का बंद जो बंधे हुए कर्म है वो कैसे निकलेंगे, निर्जरा के द्वारा। जीव तो मैं हूँ ही, मुझसे भिन्न सभी अजीव हैं, ये कर्म मेरे अंदर आए हुए हैं, तो मुझे इसको भी जानना है, ये कर्म संवर के द्वारा निकलेंगे तो मुझे संवर को भी जानना है, लेकिन ये तो क्या होगा, ये उस रास्ते को रोक देगा, हमने वो उदाहरण देखा हुआ है, सबको उदाहरण याद है, कौन सा, नाव वाला, कि ये जो संवर है ये उस रास्ते को तो, उस छेद को तो बंद कर देगा, जो कर्म, जो पानी आ रहा था, जो आश्रम हो रहा था, उस आश्रम के रास्ते को तो इस संवर ने रोक दिया, बंद कर दिया, तो अब ये पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो बंद गया है, जो भर गया पानी है, जो बंद हो गया है, उस बंद, उस भरे हुए पानी को कौन निकालेगा, निर्जरा निकालेगा। तो हमको इस बंद को भी जानना पड़ेगा और उसके कारण निर्जरा को भी जानना पड़ेगा। तो इन सात के द्वारा मेरा जो मोक्ष रूपी प्रयोजन है और अंतिम सुख क्या है, मोक्ष। तो इन सात तत्वों के द्वारा मेरा जो सुखी होने का मोक्ष रूपी प्रयोजन है वो पूरा होता है, इसके लिए इन्हें सात ही तत्व कहते हैं, ना छह है ना ही आठ है, बराबर है। अब हमारी चर्चा किस पे चल रही थी, गुणों पे, कि ये जो वस्तुत्व गुण है, वस्तुत्व गुण कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का। जो सामान्य गुण में सबसे पहला गुण था अस्तित्व गुण, सबसे पहला गुण था अस्तित्व गुण, दूसरा गुण वस्तुत्व। तो अभी जो हमारी चर्चा चल रही थी, वस्तु मतलब प्रयोजन, वस्तु मतलब प्रयोजन। तो जिस गुण के द्वारा द्रव्य के अंदर प्रयोजन भूत क्रिया होती है उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं, समझ में आया। अस्तित्व गुण जिस गुण के द्वारा द्रव्य में अस्थिपना कायम रहे, उसका होना, उसकी हयाती, उसका हैपना कायम रहे, उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। और जिस गुण के द्वारा द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया चलती है उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। अभी प्रयोजन का अर्थ तो समझ गए, प्रयोजन मतलब जो भी उसका हेतु है, मतलब जिस द्रव्य का जो कार्य है, वो कार्य जिसके द्वारा चलता रहे वो है वस्तुत्व गुण। इसके बाद में आता है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य, मतलब जिस गुण के कारण द्रव्य का कोई ना कोई पर्याय रहे, परिणमन रहे, उसको द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्य है तो गुण भी होगा और पर्याय भी होगी, पक्का। द्रव्य है तो गुण भी होगा और पर्याय भी होगी, वापिस से समझ के, द्रव्य है तो गुण भी होगा और पर्याय भी होगी, हाँ या ना। जितने ना में बोल रहे हैं और जितने हाँ, पहले हाँ वाले हाथ ऊपर करें, हाँ अब ना वाले करिए। क्लास है, कोई अपने को शर्माने डरने की बात नहीं है, क्लास में तो सच्ची। द्रव्य है तो गुण भी होगा और पर्याय भी होगी, बराबर है। कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है, द्रव्य होगा तो गुण भी होगा और पर्याय भी होगी, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा हमने क्या कही, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और एक जगह और पर्याय से गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्यायवान ही द्रव्य होता है, चाहे वो द्रव्य निगोद में रहे, चाहे वो द्रव्य सिद्ध अवस्था में रहे। सिद्ध अवस्था में द्रव्य है कि नहीं, सिद्ध में द्रव्य है कि नहीं, है ना। तो अगर अपन कहें कि सिद्ध में द्रव्य तो है लेकिन गुण और पर्याय नहीं है, है, क्योंकि द्रव्य कभी भी गुणों और पर्याय के बिना नहीं रह सकता। इतना हो सकता है कि हमको उसका ज्ञान नहीं हो, हमारे ज्ञान की मंदता होने के कारण, अभी वो आगे गुण भी आएगा, जो प्रमेयत्व नाम का गुण आएगा, उसका प्रमेयत्व गुण क्या कहता है कि जिस व्यक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बने उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। तो द्रव्य में ये शक्ति है कि वो सदैव किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन हमारे ज्ञान की कमजोरी हो सकती है कि हमें वो ख्याल में नहीं आए। सिद्ध हमें सिद्ध दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, बराबर है। हमें निगोदिया दिखाई देते हैं, नहीं देते। तो निगोदिया है कि नहीं, है। सिद्ध है कि नहीं, है। हमें हमारे दादा के दादा के दादा दिखाई देते हैं, कोई बोलेगा कि हमें स्मृति में आते हैं, मतलब हमने उनकी दादा को तो हमने देखा होगा तो वो हमारे स्मृति में आते हैं। दादा के दादा हमने नहीं देखा लेकिन हमारे घर में उनकी फोटो थी तो हमें फोटो से वो ख्याल में आते हैं। उनके दादा के दादा, चलो उनकी भी फोटो कहीं से भी होगी तो वो भी हमने देखे होंगे, उनके दादा के दादा, तो वो है कि नहीं? है कि नहीं? डाउट है? नहीं है। क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि हम हैं। क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि हम हैं। वही उनके उनसे ही करी आ रहे ना, उनसे उनके लड़के, उनके लड़के से उनके, उनके से उनके, उनके उनके, और बाद में हम हैं। तो हम हैं इसका मतलब वो भी है। तो हमारे ज्ञान की कमजोरी के कारण वो हमको अभी ख्याल में नहीं है या हमको वो पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे जगत में ये जो विश्व है इसमें कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो हमारे ज्ञान में नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तुएं है ही नहीं। और उन वस्तुओं में सबके ज्ञान में आने की क्षमता है। किसके ज्ञान में आती है? किसके ज्ञान में आती है? केवल ज्ञानी के ज्ञान में आती है। सिद्ध तो ऐसा ज्ञान अभी कर ही नहीं, सिद्ध तो खाली अपने स्वरूप में ही लीन है और वही प्रति समय उनकी पर्याय उसी आनंद में चेंज होती है। तो जो केवल ज्ञानी की है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में समस्त विश्व में जितनी भी चीजें हैं, सर्वज्ञपना कहते हैं ना, तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्व प्लस अज्ञ, सर्व मतलब सभी को, अज्ञ मतलब जानने वाला, जो सभी चीजों को जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अब इसको और विस्तार में अगर परिभाषा करें तो जो तीनों लोक की, तीनों काल की समस्त बातों को, समस्त द्रव्य गुण पर्याय को हाथ पे रखे, एक समय में हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति स्पष्ट रूप से जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, उसे वो केवल ज्ञानी का ज्ञान है। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये समस्त बातें आती है, तो इसका मतलब है वो समस्त वस्तुएं भी विद्यमान है। तो अब ये जो द्रव्यत्व नाम का गुण है वो बताता है कि द्रव्य की, द्रव्य किसी न किसी पर्याय में होगा, द्रव्य बिना पर्याय का कभी भी नहीं होगा। अभी चाहे सोना है, किसी ने कुछ भी, जैसे सोने का हमने कोई भी आभूषण पहना है, कोई भी ऑर्नामेंट पहना है, किसी ने कोई बैंगल पहने हैं गोल्ड के, बराबर है। अब वो उसमें द्रव्य क्या है? ऐसे अजीब द्रव्य, लेकिन अगर और सामान्य अपेक्षा से देखा जाए तो गोल्ड, जो गोल्ड है वो उसका द्रव्य है, सोना जो है वो उसका द्रव्य है। उसके गुण कैसे है? पीलापना उसका गुण है, चिकनापना उसका गुण है, ये सब उसके गुण है। अब पर्याय क्या है? अभी वो बैंगल रूप में है वो उसकी पर्याय है, फिर आप उसको, अगर आपको जैसे डिजाइन आउट ऑफ डेट हो गई, डिजाइन पुरानी हो गई, तो हमको क्या लगता है कि हम उसको चेंज कर दें, तो चेंज करते हैं तो क्या फेंकते तो नहीं है ना? गोल्ड तो फेंकते नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान है, इसका प्रयोजन पता है, उसका हमें रेट मालूम है ना कि गोल्ड कितना कैसा चल रहा है अभी, 30,000 का जितने का भी चल रहा है, कि उतने का उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू का मूल्य हमको मालूम है, लेकिन हमको अपनी वैल्यू नहीं मालूम है। कहते ना कि राजा होकर हम कैसे हैं? भिखारी है, राजा होकर हम रक्त जैसे हैं। तो ऐसे ही कि वो जो बैंगल रूपी पर्याय की हमने क्या किया, हमने वापस उसको ज्वेलर को दिया, उसको गला के हमने उसका अंगूठी बना लिया, रिंग बना लिया, जो भी चीज चैन रक्त बनाया, तो अब उसकी पर्याय क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जिस गुण के कारण द्रव्य में, द्रव्य सदैव किसी न किसी पर्याय रूप में रहता है, द्रव्य सदैव किसी न किसी अवस्था रूप में रहता है, उसको द्रव्यत्व गुण कहते हैं। फिर आता है प्रमेयत्व गुण, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बने उसका नाम है प्रमेयत्व गुण, कि मेरा जो द्रव्य है वो सदैव किसी न किसी के ज्ञान में तो जानने में आएगा। अभी यहाँ पर क्लास चल रही है, किसके ज्ञान में आ रही है? हम सबके ज्ञान में आ रही है, बराबर है। जो घर पे बैठा है उसके ज्ञान में नहीं आ रही। कोई बोलेगा आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम लोग लाइव घर बैठे बैठे ही हमको सब ज्ञान में आता है, लेकिन जैसा आपको अनुभव है वैसा उनको अनुभव नहीं है। या फिर ऐसा कहा जाए कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो किसी दूसरे के ख्याल में नहीं आती है, लेकिन फिर भी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में, प्रमेय मतलब होता है जानने योग्य, ज्ञान करने योग्य, प्रमेय। प्रमेय मतलब होता है ज्ञान, प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान, और उसका घे मतलब उसके जो पदार्थ है कि ये द्रव्य जिस शक्ति के कारण सदैव किसी न किसी ज्ञान में का विषय रहे, आपका नहीं रहे तो केवरी के ज्ञान में तो आता ही आता है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य सदैव किसी न किसी ज्ञान का विषय रहे उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं। कितने गुण हुए? चार। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत। सामान्य गुण कितने हैं? वैसे तो सामान्य गुण अनंत है, लेकिन मुख्य अपेक्षा से उनको छह भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आवाज आनी चाहिए, पहला है अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व, तीसरा द्रव्यत्व, चौथा प्रमेयत्व। पहला अस्तित्व, दूसरा चौथा प्रमेयत्व, तीसरा द्रव्यत्व, दूसरा तीसरा चौथा तीसरा पहला पांचवा अभूत। आ गुरु लघुत्व, आ गुरु लघुत्व, जिसके कारण जिस शक्ति के कारण द्रव्य, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, मतलब छोटा बड़ा मतलब मेरे गुण निकल के आपके अंदर घुस जाए और आपके गुण निकल के मेरे अंदर घुस जाए, ये माइक के गुण मेरे अंदर आ जाए और इस माइक के अंदर मेरे गुण चले जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर कभी अलग अलग नहीं होते, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य गुण उसके अंदर जैसे हैं वैसे सदैव विद्यमान रहते हैं, उसको अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। सामान्य से आप परिभाषा अगुरु लघुत्व, आ मतलब नहीं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कभी छोटा बड़ा पना नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। द्रव्य में कितने गुण है? अनंत गुण है। तो ऐसा नहीं होता कि ज्ञान गुण निकल गया। आपने कभी देखा है जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली या सांप वगैरह होता है, छिपकली होती है तो उसकी जो पूंछ होती है तेल होती है वो कट जाती है, बराबर है, कट जाती है और वो कट के थोड़ी देर तक हिलती है। अभी शायद किसी ने नहीं देखा होगा, पहले तो बहुतों ने देखा होगा। तो अब वो हिल रही है तो उसके हिलने का कारण क्या है? उसमें जीव है कि नहीं? समझ, वो जो छिपकली थी उसकी पूंछ कट के, क्या ऐसा भी हम बोलते हैं कि जैसे अपने शरीर में से भी कोई अंग कट जाता है तो वो थोड़े समय तक उसमें वो क्रिया हलन चलन की क्रिया रहती है। तो जो मेरे अंदर गुण थे, सपोज दैट मेरे अंदर 500 गुण थे, कितने गुण थे? 500। अब वो 500 कहते थे 10 10 10 10 10 या 50 50 50 करके पूरे जगह, मेरे 10 जगह में 50 × 10 थे, बराबर है। अब मान लीजिए मेरा एक कोई भी अंग कटा तो मेरे 50 गुण कट गए ना, ऐसा नहीं होता? तो फिर क्या होता है? नहीं, वो तो ठीक है, चलिए मैं और जो समझ, हर जगह है गुण वो तो है ही। अब ये जो मेरा बोलना है कि यहाँ पे गुण है, बराबर है, यहाँ गुण है कि नहीं? हाँ, हाँ तो बोलो, हाँ यहाँ गुण है। अगर बाई चांस ये कट जाए, शरीर से अलग हो जाए, तो इसके जो गुण है वो गुण तो अलग होंगे कि नहीं होंगे? पूरे पूरे प्रदेश में है, बराबर है।
कटने से बाकी में तो वो है ही जाना वो
लेकिन इसके अंदर जो थे वो अलग हुए कि नहीं हुए पहली बात तो ये क्या था अजीब था पहली बात तो ये अजीब ही था इसके अंदर लेकिन जहाँ तक आत्मा के प्रदेश थे गुण तो थे गुण तो इसके अंदर थे ही ऐसा होता है जब भी कोई प्रदेश अगर अलग होता है जैसे जो पुत्र का प्रदेश अलग हुआ तो उतने समय में वो सभी गुण वापिस थे मतलब जितने भी उसके अंदर जो गुण थे वो जितने भी गुण थे वो वापिस से अपने प्रदेशों में पुनः आ जाते हैं एक अलग विषय है ये कि जैसे कोई भी अपना अंग या कुछ भी अलग हुआ तो जितने भी आत्मा के प्रदेश उसके अंदर थे वो आत्मा के प्रदेश पुनः ऐसी शक्ति क्रिया के कारण पुनः अपने आत्मा के अपने इस शरीर आकार में वापस से आ जाते जो तत्व विस्तार की जो शक्ति होती है कि अगर कोई प्रदेश इस शरीर के अंग के कारण अगर वो प्रदेश कुछ बाहर भी हुए तो भी वो पुनः वापस से आत्मा के साथ मतलब उस प्रदेश के साथ ही वापस से आ जाते हैं क्योंकि वो प्रदेश भिन्नता कभी नहीं होती है थोड़ा अभी कंफ्यूजन है मैं आपको वापस क्लियर करता हूँ कि जैसे कोई भी ये तो क्या है ये पुत्र है अजीव है बराबर है अब इस अजीव के अंदर क्या है जीव विद्यमान है इस अजीव के अंदर क्या है जीव विद्यमान है हमारी मृत्यु के समय जब ये जीव चला जाता है कहाँ चला जाता है दूसरी पर्याय में चला जाता है दूसरी गति तब तो इस पुद्गल के अंदर इस अजीव के अंदर जीव है ही नहीं तब तो आप इसको कुछ भी करो काटो इसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं होगी लेकिन अभी वर्तमान के अंदर जैसे कोई भी हमारा अंग कटता है तो उसमें एक क्षण मात्र की एक क्रिया होती है क्योंकि उसके अंदर एकदम से वो प्रदेश रहते हैं और वो प्रदेश बहुत न्यून समय मतलब अंतर जो बोलते हैं ना अपना समय की जो बिल्कुल काल की जो न्यूनतम सीमा है उस सीमा के अंदर वो प्रदेश पुनः इस शरीर के अंदर वापस से आ जाते हैं तो वो जो एक क्षण मात्र की जो क्रिया होती है चलिए अपन क्रॉस साइड से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर जीव में तो क्रिया करने की अजीव में तो हलन चलन की शक्ति है ही नहीं बराबर है तो वो जो अंग कट गया वो तो अजीव था तो वो हलन चलन क्यों कैसे हुआ सेकंड साइड से समझ में आया अभी अपन इधर से बात करते हैं अभी अपन उधर से बात करते हैं कि ये जो अंग कटा विभाजित हुआ वो अंग एक मिनट तक या आधे सेकंड तक या एक दो सेकंड तक जो हलन चलन की क्रिया होती है चलिए और सिंपल लो अभी आप सबने बाहुबली देखी होगी बाहुबली मूवी देखी थी जब बाहुबली मूवी के अंदर वो सीन आता है कि वो उसका सर अलग कर देता है तो उसके बाद भी उसका धड़ मतलब नीचे का पोर्शन हिलता है आधे मिनट तो ऐसे ही वो जो शरीर का अंग जो हिल रहा है वो तो अजीव है वो अंग क्या है अजीब है अजीब में तो वो क्रिया होती नहीं है तो वो उसका हलन चलन का कारण क्या है ये जो आत्मा के प्रदेश जो उसमें विद्यमान थे तो वो जो भी अंग था वो वापिस से उसी शरीर आकार के अंदर वो आत्मा के प्रदेश वापिस आ जाते हैं लेकिन जो उसमें समय लगता है उतना वहां पे परिस्पंदन देखा जाता है तो ये जो अघुर लघुत्व गुण है ये गुण कहता है कि द्रव्य के जो गुण है वो कभी भी इससे अलग नहीं होते कि ये चाहे आप किसी भी अवस्था में लो सोना जो है सोने को आप चाहे कैसे ही गोल से चपटा कर दो चाहे चपटे से आप इतना छोटा कर दो चाहे इतना बड़ा कर दो कि उसके गुण बड़े नहीं हो जाएंगे उसके गुण छोटे नहीं हो जाएंगे या फिर उसके गुण उसमें से अलग नहीं हो जाएंगे चाहे किसी भी अवस्था में रहे कैसा ही रहे छोटा बड़ा मोटा पतला कैसा भी रहे हाथी मोटा है तो हाथी में ज्यादा गुण होंगे चीटी छोटी है तो चीटी में थोड़े हो बराबर है ना नहीं है ना हाथी इतना बड़ा है तो उसमें थोड़े ज्यादा होने चाहिए हम तो फिर भी चीटी कितनी सी है कितनी सी है तो उसमें गुण कम होने चाहिए ना हाथी की आत्मा में अनंत गुण है और चीटी की आत्मा में थोड़े से गुण है ऐसा नहीं होना सबके में कैसे है
बराबर सभी द्रव्य में, चाहे वो हाथी की पर्याय में रहे चाहे वो चींटी की पर्याय में रहे, जीव चाहे हाथी की पर्याय में रहे चाहे चींटी की पर्याय में रहे, उसके अंदर रहने वाले गुण तो सदैव उसी रूप में, चाहे वो चींटी में है चाहे वो हाथी में, एक संकोच विस्तार रूप जो शक्ति है उसके कारण ये जीव किसी भी आकार के अंदर रह सकता है, और लेकिन उसके अंदर रहने वाले जो अनंत गुण है वो कभी भी ना छोटे बड़े होते हैं, ना कभी भी वो अलग होते हैं, ना गुण बिखर के अलग होते हैं, ना छोटे बड़े होते हैं, ना अपने गुण मेरा गुण दूसरे में जाता है ना दूसरे का गुण मेरे में आता है। ये कौन बताता है? अगुण लघुत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, एक गुण दूसरे गुण रूप, एक गुण दूसरे गुण रूप मतलब हाँ, जैसे गुण है, गुण मीठा भी है चिकना भी है पीला भी है, तो उसकी मिठास चिकने पर रूप नहीं होती, उसमें गुण कैसे है? चिकनापना भी उसका गुण है, उसकी मिठास भी उसकी गुण है, पीलापना भी उसका गुण है, तो उसका पीलापन चिकनाई रूप नहीं होता, मिठासपने रूप नहीं होता, मतलब एक गुण दूसरे गुण रूप कभी भी नहीं होता, प्रत्येक गुण अपना अपना ही कार्य करता है, ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप नहीं होता, सुख गुण रूप नहीं होता, विजय गुण, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, एक गुण रूप दूसरे गुण रूप नहीं होता, गुण में छोटा बड़ा पना नहीं होता, उसे अगुण लघुत्व गुण कहते हैं। अब इसके बाद में कौन सा आता है? छठा गुण कौन सा है? प्रदेशत्व। प्रदेश, प्रदेश मतलब होता है आकार, प्रदेश मतलब जो भी स्थान घेरता है, तो स्थान किसके द्वारा घेरता है? आकार के द्वारा घेरता है, कि जीव जो द्रव्य है वो किसी ना किसी आकार के अंदर ही रहता है, चाहे वो हमें दिख नहीं रहा, कोई कहे कि धर्म द्रव्य तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो धर्म द्रव्य का आकार क्या है? धर्म द्रव्य का कोई आकार है कि नहीं है? लोक प्रमाण तो है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है तो हम माने कि नहीं माने, है ना? जैसे हमें चाहे वो दिख नहीं रहा है लेकिन उसका आकार तो सदैव है, चाहे आकाश है, हवा हमको दिखाई देती है, दिख रही ना आ रही है, हवा दिखाई देती है नहीं दिखाई देती, तो हवा का कोई आकार है कि नहीं है? हवा का आकार है ना, हवा का आकार होता है ना, अपन किसी भी चीज के अंदर से हवा भरते हैं, बलून फूल जाते हैं, तो जिस भी उसमें डाला तो उस आकार में हो जाती है, बड़े बड़े बलून में भर देते हैं, कोई किसी दूसरे चीज में भर देता है, टायर में भरते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई आकार है, हम चाहे उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं लेकिन हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार सदैव रहता है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य कोई ना कोई आकार में सदैव रहता है उसको कहते हैं प्रदेशत्व गुण। बराबर है? कितने गुण हुए? हाँ, गुण किसे कहते हैं? ऐसे सिस्टम नहीं चाहिए अच्छे से, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और की संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। बराबर है? सब्जी मंडी की तरह कोई ऐसा बोलेगा कोई ऐसा बोलेगा, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। गुण के दो भेद हैं, एक है सामान्य गुण और एक है विशेष गुण। जो सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में समान रूप से इक्वली जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं, जो सभी द्रव्यों में नहीं अपने अपने द्रव्यों में पाया जाता है उसे विशेष गुण कहते हैं। बराबर है? समझ में? अब सामान्य गुण के वापस से कितने भेद किए? वैसे तो कितना है? अनंत है, छह भेद के। कौन कौन सा? पहला अस्तित्व गुण, दूसरा वस्तुत्व, तीसरा चौथा प्रवेयत्व, पांचवा और छठा प्रदेशत्व। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। पहला, दूसरा, छठा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, छठा, पांचवा, पहला, छठा, चौथा, तीसरा, सातवा, नहीं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, समयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। अस्तित्व क्या बताता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का अस्थिपना रहता है, अस्थिपना का उसका होना कायम रहे, वो अस्तित्व गुण बताता है। वस्तुत्व देखो, अस्तित्व बताता है पना, वस्तुत्व बताता है वस्तुपना, द्रव्यत्व बताता है पर्यायपना, प्रमेयत्व बताता है ज्ञानपना, अगुरुलघुत्व बताता है स्वतंत्रपना और प्रदेशत्व बताता है आकार। अस्तित्व मतलब है, अतः ये जो द्रव्य है मैं हूँ, मेरी अस्थि सदैव कायम रहने वाली है, मेरा कोई भी नाश नहीं कर सकता। मैं ही नहीं, चाहे खुदगल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म, तो क्या पर ये क्या है? सामान्य गुण है। यहाँ जीव विशेष की चर्चा नहीं है, यहाँ तो छह द्रव्य की चर्चा है। क्यों? क्योंकि ये सामान्य गुण की चर्चा है। जब विशेष गुण की चर्चा आएगी तब जीव पुद्गल सबको अलग अलग रूप से हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी क्या है, सामान्य गुण की चर्चा चल रही है। तो ये सामान्य गुण छह द्रव्य में को इक्वली मिलते हैं। तो ये जो अस्तित्व गुण है वो है पना बताता है। वस्तुत्व गुण मतलब कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया रहे उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। द्रव्यत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य निरंतर परिणामशील रहे, वो कोई ना कोई पर्याय में रहे, उसको द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता रहे उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं होते, कोई गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और छोटे बड़े नहीं होते, उसको अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। और जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी आकार में पाया जाता है उसको प्रदेशस्थ गुण कहते हैं। बराबर है? समझ में आया? याद रहेगा? इसकी गारंटी नहीं है। ये पता है। नाम तो याद हो ही गए होंगे। सबसे पहला अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व, तीसरा द्रव्यत्व, चौथा प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। रिवर्स कॉलम में बोलिए, छठा प्रदेशत्व, पांचवा चौथा प्रमेयत्व, तीसरा द्रव्यत्व, दूसरा वस्तुत्व, पहला अस्तित्व, पहला दूसरा चौथा प्रमेयत्व, पांचवा तीसरा छठा तीसरा दूसरा पहला छठा प्रदेशत्व, पांचवा अगुरु लघुत्व। ये छह क्या है? सामान्य गुण। ये छह क्या है? और ये छह सामान्य गुण किसमें पाए जाते हैं? सभी द्रव्यों में। मुझमें है, क्योंकि मैं भी क्या हूँ? द्रव्य हूँ। कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। मेरे अंदर भी गुण पक्का है, गुण है। कौन कौन से गुण है मेरे अंदर? अस्तित्व अभी अपन सामान्य गुण की चर्चा कर रहे हैं ना, तो मेरे अंदर कौन कौन से गुण है? अस्तित्व, लेकिन अपनी कभी भी अगर कोई भी पूछता है आत्मा में कौन से गुण है तो हम क्या बोलते हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। कभी ऐसा किसी ने भी बोला, किसी ने भी सुना कि मेरे अंदर अस्तित्व है, मेरे अंदर वस्तुत्व है, मेरे अंदर द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुणत्व है, प्रदेशत्व है? कभी कोई बोलता है ऐसा? नहीं बोलता। बस छूटते गाड़ी क्या छूटती है? कौन से बड़े? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। चार के आगे तो वैसे ही है ना, चार से ज्यादा तो आता भी नहीं है हमको। कितने बस सीधे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चार। तो हमारे अंदर कितने गुण है? अनंत गुण है, जीव में अनंत गुण है। विशेष अपेक्षा भी है और सामान्य अपेक्षा भी अनंत है। सामान्य अपेक्षा भी ये छह ही नहीं है, अनंत गुण है। लेकिन जो मुख्यता से हमने जो छह की बात की, वो छह भी मेरे अंदर भी विद्यमान है। जीव में भी है, उद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है और काल में भी है। तो ये जो सामान्य गुण है, ये सामान्य गुण छह द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाने के कारण इनको सामान्य गुण कहते हैं। बराबर है? इतना समझ में आया? अभी हमने डेफिनेशन के हिसाब से नहीं लिया है, खाली आपको सामान्य से, अभी जितनी भी चर्चा आगे चलेगी डेफिनेशन के हिसाब से, वो इसी विषय को आगे लेके चलेगी। जो आपने अभी पूरे छह गुण समझे, उन छह गुणों की प्रॉपर परिभाषा क्या है, उनका प्रयोजन क्या है, उनको जानने से लाभ क्या है, ये सब आगे के क्वेश्चन में आपको आएगा। तो अभी बेसिक में इतना सा समझ लेना है कि जो विश्व है वो द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है, जो द्रव्य है वो गुण के समूह का नाम है, गुण पर्याय से युक्त होता है। इसका मतलब है द्रव्य में गुण और पर्याय सदैव विद्यमान रहती है, और ये जो गुण है वो सामान्य और विशेष रूप से होते हैं। तो सामान्य जो गुण है वो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है, और वो गुण है अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, तो ये सामान्य गुण सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है? बराबर है, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अभी अपन यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, संक्षिप्त में दिनवाड़ी स्तुति करेंगे।
निज निधि निज में बताई वंदना शतवा।